रात का वक्त हो चला था, ज्यादातर लोग अपने अपने घर जा चुके थे, बस कुछ रिश्तेदार ही रह गए थे। सबको आज का अजय का व्यवहार देखकर अंदाजा हो गया था कि राधिका ने क्या क्या सहा होगा वहां उस घर में। कईयों ने आज जो हुआ उसे सही ठहराया कि जो आदमी पिता के घर में घर की बेटी संग ऐसा सुलूक करे उससे रिश्ता तोड़ ही देना चाहिए, तो कुछ घर गृहस्थी की दुहाई देने लगे कि सब सहना पड़ता है, तीन बेटियां और हैं, अगर बड़ी बेटी का रिश्ता टूट गया तो उनके लिए रिश्ता नहीं मिलेगा, फिर क्या चारों बेटियों को सारी जिंदगी घर ही बिठाकर रखेंगे। आशुतोष जी ने किसी की बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लोगों का काम है कहना सो कहते रहेंगे। उन्हें ये देखना था कि उनकी बेटी के लिए क्या सही है और क्या नहीं, और वो जानते थे कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। चारों लड़कियां अपने पापा के साथ बैठी थी, राधिका उनकी गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। सभी चुप थे और बस राधिका को ही देख रहे थे, जिसे इतना टूटा हुआ और कमजोर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या हाल कर दिया था अजय ने उसका, सबके मन में उसके लिए नफरत भर गई थी। बेटा, दामाद जी हमारे सामने आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, अकेले में तो और बुरा व्यवहार करते होंगे, और फिर भी आप इतने महीने सब सहकर भी उनके साथ रहीं, आपने हमें कभी कुछ क्यों नहीं बताया? आशुतोष जी के मन में कब से ये सवाल था जो अब उन्होंने राधिका से पूछ लिया। राधिका उनकी गोद से सर बाहर निकालकर उन्हें देखने लगी। माँ को बताया था पापा, मैंने उन्हें सब कुछ बताया था, पर वो हर बात यही कहती कि सबके साथ ऐसा ही होता है, सहना पड़ता है, रिश्ते को निभाने के लिए समझौते करने पड़ते हैं, मन मारकर जो जैसा है उसके अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। वो कहती थी कि अगर मैंने रिश्ता तोड़ दिया तो आपके दिए संस्कारों और परवरिश पर सवाल उठेगा, मेरे वजह से बाकी तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बड़ी बेटी शादी का रिश्ता नहीं निभा सकी तो बाकियों के लिए भी अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, और आपको माँ को लोगों के आगे शर्मिंदा होना पड़ेगा। राधिका का सवाल सुनकर तीनों लड़कियां मायूस हो गईं, वो भी कारण रही अपनी दीदी के दुखों का, यही सोचकर उनका मन उदास हो गया। वहीं आशुतोष जी का मन भी व्यथित हो गया। सबके साथ नहीं होता बेटा, पर इसमें गलती हमारी है, हमने बिना जांच पड़ताल किए आपकी मम्मी के दबाव में आकर जल्दबाजी में आपकी उनसे शादी करवा दी, और इतने वक्त तक आपकी माँ और आपकी झूठी बातों पर विश्वास करते रहे कि हमारी बेटी वहाँ खुश है, अपनी घर गृहस्थी में सुखी है। हम आपके लिए काबिल जीवन साथी नहीं ढूंढ सके, आपका हाथ एक ऐसे शख्स के हाथों में सौंप दिया जिन्हें आपकी कद्र नहीं हुई, हम आपकी मुस्कान के पीछे छुपा दुख और उदासी नहीं देख सके, हमारे कारण आपको जाने क्या क्या सहना पड़ा, पर अब हम अपनी सभी गलतियों को सुधारेंगे, आप तलाक ले लीजिए उनसे, हम आपके साथ हैं, और हम सब भी आपके साथ हैं दीदी, आप डिवोर्स ले लीजिए गंदे जीजू से, हमें वो नहीं चाहिए, हमें बस अपनी दीदी चाहिए। उसकी तीनों बहनों ने भी एक सुर में अपनी ख्वाहिश बयां की, यही तो चाहती थी वो, अपनों का साथ और उनका प्यार। राधिका मुस्कुराकर उठकर आशुतोष जी के गले से लग गई और बाकी तीनों भी उससे लिपट गईं। आशुतोष जी ने अपनी बेटियों को अपनी बाहों में भर लिया। इस वक्त राधिका को किसी समझाइश या सांत्वना की जरूरत नहीं थी, उसे बस साथ चाहिए था अपनों का, साथ जो इस कमजोर वक्त में उसकी हिम्मत बने, और वो उसे मिल गया था। आज उसका पूरा परिवार उसके साथ था, और अब इसी परिवार के लिए उसे अपने बिखरे वजूद को समेटना था, इस मुश्किल वक्त का सामना करना था, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना था, और हर बाधा को पार करके फिर से अपनी पहचान बनानी थी। अर्चना जी को इस दुनिया से गए एक महीना बीत गया था, उन्हें खोने का दुख तो आज भी सबको था, पर अब एक दूसरे का सहारा पाकर वो उस गम से बाहर निकलने और संभलने लगे थे। राधिका ने भी पूरे घर को संभाल लिया था। इस एक महीने में वो कई वकील से मिली थी, पर कोई भी उसका केस लेने को तैयार नहीं था। वजह अजय था, दबंग आदमी था वो, जिससे राधिका मिलती उसे ही धमका देता तो वो डराकर हाथ पीछे खींच लेते। अगर अजय ने राधिका को छोड़ा होता तो बात इतनी नहीं बढ़ती, पर यहाँ राधिका ने उसे छोड़ा था जो उसके बर्दाश्त से बाहर था। गुरूर ही इतना था कि अपनी इस शिकस्त को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और उसे अपने आगे झुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपने घमंड में इतना पागल हो गया था कि आए दिन शराब पीकर राधिका के घर के बाहर हंगामा करता, राधिका के बारे में घटिया बातें कहता, उसे बदनाम करने की, लोगों की नजरों में गिराने की हर संभव कोशिश करता, ऐसा दिखाता जैसे राधिका ही गलत है। उसकी इन बेहुदा हरकतों ने राधिका और उसके परिवार के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था। राधिका घर से बाहर कदम रखती तो लोग उसे अजीब नजरों से घूरते, आशुतोष जी को गंदी गंदी बातें सुनाते। बीती रात तो उसने हद ही कर दी थी, राधिका का सामान उठा लाया था और उसके घर के बाहर फेंक दिया था, खूब चीखा चिल्लाया, घटिया घटिया बातें कही, गंदी गालियां दी, राधिका को बार बार बाहर आने को कहता रहा, उसकी बहनों के बारे में उल्टी सीधी बातें कहता रहा। उसने राधिका को उकसाने की पूरी कोशिश की, पर आशुतोष जी ने किसी को बाहर नहीं जाने दिया। जब बाहर माहौल शांत हुआ तो खुद ही बाहर गए, आसपास लोगों की भीड़ जमा था जो अब तक तमाशा देख रहे थे और अब आपस में चुगलियां करने लगे थे। कईयों ने तो उन्हें वहां से जाने को भी कह दिया कि उनके कारण माहौल खराब हो रहा था। आशुतोष जी ने बिना किसी को जवाब दिए चुपचाप राधिका का सामान उठाया और अंदर चले आए।
ठीक ही कहा था अजय ने कि उनका जीना मुश्किल कर देगा, इज्जत से सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ेगा। वो यही सब कर रहा था। आशुतोष जी अंदर आए तो सामने ही राधिका आंखों में बेशुमार आंसू लिए खड़ी थी। पापा, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया? मेरे कारण आप सबको कितनी परेशानी हो रही है। आपको लोगों की कैसी कैसी बातें और ताने सुनने पड़ रहे हैं। शायद अपने परिवार को अपने लिए सफर करते देखकर वो विचलित हो गई थी और अब उसे अपने फैसले पर शक होने लगा था। आशुतोष जी, जिनके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी थी, उन्होंने बैग साइड में रखे और राधिका के पास चले आए। नहीं बेटा, आप कुछ गलत नहीं कर रही। गलत तो वो शख्स है जो सिर्फ हमें अपने सामने झुकाने के लिए ऐसी घटिया और ओछी हरकतें कर रहा है। गलती तो हमने हुई थी जो हम पहले उसे पहचान न सके, और आपकी शादी ऐसी घटिया मानसिकता के आदमी से करवाकर आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कब से गलतियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सफर मुश्किल है, पर हौसला रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक बार आपका तलाक हो जाए फिर हम अपने दूसरे वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बस तब तक हिम्मत के साथ इन हालातों का सामना कीजिए। उन्होंने बहुत ही प्यार से उसे समझाया था, पर ये वो भी जानते थे और राधिका भी जानती थी कि ये सब इतना आसान नहीं है। आज की सारी रात राधिका को नींद नहीं आई। अगली सुबह घर के काम निपटाने के बाद वो होटल के लिए निकल गई, जहां उसकी आज एक वकील से मीटिंग फिक्स थी। कुछ देर बाद राधिका एक आदमी के सामने बैठी थी, सूट बूट पहने, चेहरे पर रौब लिए, अभिजीत सहगल। मेरी कहानी अस्मिता में आपको इनका जिक्र मिलेगा। राधिका के सामने बैठा था, जिसकी पर्सनैलिटी कहीं से भी हीरो से कम नहीं लग रही थी। तो कहिए मिसेज राधिका, किस केस के सिलसिले में मिलना चाहती थी आप मुझसे? कॉफी की सिप लेके हुए बात की शुरुआत अभिजीत ने की थी, जिसके चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे। मुझे अपने पति से डिवोर्स लेना है, पर कोई वकील मेरा केस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस भी वकील से मैं बात करती हूँ, मेरे पति जाकर उन्हें धमका देते हैं और वो वकील केस लड़ने से मना कर देता है। सर ने कहा था कि आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं और मैंने आपके बारे में पढ़ा भी है। मुझे लगा कि शायद आप ही मेरा केस लड़कर मुझे इस टॉक्सिक रिश्ते से आज़ादी दिला सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ।
मुझे अंकल ने कहा है, इसलिए मैंने भी अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त आपके लिए निकाल लिया, पर मैं केस लड़ूंगा या नहीं ये मैं पूरी बात जानने के बाद ही कह सकूंगा। तो पहले तो आप मुझे डिवोर्स की वजह बताइए। जहाँ तक मुझे पता है आपकी शादी को एक साल भी नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दी डिवोर्स की वजह? मेरे पति ऐसे हैं कि उन्हें मैं इंसान की कैटेगरी में भी नहीं रख सकती, क्योंकि मेरी बात आते ही उनके अंदर की इंसानियत तक मर जाती है। उनकी सोच इतनी घटिया है और इतनी संकीर्ण मानसिकता है कि उनके साथ रहना मुश्किल है। उन्हें लगता है पति पत्नी के रिश्ते में पति भगवान है और पत्नी उसकी दासी, जिसका काम बस अपने पति की ज़रूरतों को पूरा करना और उसे खुश रखना है। जो है बस वही है, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई सोच नहीं, मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं। एंगर इश्यूज़ हैं उन्हें, जब गुस्सा आता है तो बौखला जाते हैं और तब गुस्से में मुझ पर हाथ उठाने से भी कोई गुरेज नहीं उन्हें। उनका मर्दाना गरूर उनकी रगों में खून के तरह बहता है। जो अपने बाप को करते देखा वही सीखा। औरतों की एक पैसे की इज्जत नहीं करते वो, पैरों की जूती समझते हैं। उसके हिसाब से औरत सिर्फ घर पर नौकरानी जैसे काम करने, उसकी हवस की भूख मिटाने और बच्चे पैदा करने के लिए होती है। उसके पति से अलग उसकी कोई पहचान नहीं, और मुझसे भी यही उम्मीद थी उन्हें। शराब पीते हैं तो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, हर्ट करते हैं मुझे, मुझे दर्द देकर मज़ा आता था उन्हें। पति नहीं, भूखा भेड़िया है वो, जिनके लिए मैं उनकी बीवी नहीं मांस का टुकड़ा थी, जिस पर वो वहशी दरिंदे जैसे टूट पड़ते। पति थे वो मेरे, पर ये बात उन्हें सिर्फ तब याद आती जब उन्हें अपनी ज़रूरतें मुझसे पूरी करवानी होती, वरना पसंद तो वो मुझे कभी करते ही नहीं थे और ना ही अपने साथ खड़े होने लायक समझते थे। इसलिए मुझसे शादी तो कर ली, पर ना कभी अपने साथ कहीं बाहर लेकर गए, ना कभी कुछ ला कर दिया, ना कभी उनकी ओर से मेहनत और रिश्ते को निभाने की कोशिशें नज़र आईं। उन्हें तो मेरी कद्र तक नहीं थी। प्यार और परवाह करना तो दूर की बात थी, वो तो मुझे सम्मान तक नहीं दे सके जिसकी मैं उनकी पत्नी होने के नाते हकदार थी। ले जाकर उस चार दीवारी में कैद कर दिया, मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली, मेरी पढ़ाई छुड़वा कर घर बिठा लिया, किसी से भी मिलने और बात करने पर पाबंदी लगा दी, मेरी ख्वाहिशों, चाहतों, सपनों को अपने पैरों तले रौंद दिया, मेरे आत्मसम्मान पर बार बार आघात किया, मेरे अस्तित्व को छलनी कर दिया। मेरा वजूद जैसे बस घर के काम करने और उसकी ज़रूरतों, ख्वाहिशों को पूरा करने जितना ही रह गया था। उन्होंने मुझे मेरे परिवार तक से दूर कर दिया था। इन सब के बावजूद मैंने बहुत कोशिश की उस रिश्ते को निभाने की, उनके लिए वो सब छोड़ दिया जो मुझे पसंद था, खुद को उसके हिसाब से ढाल लिया, अपने आत्मसम्मान तक को ताक पर रख दिया। सब खामोशी से सहती रही, क्योंकि उस रिश्ते से मेरे पेरेंट्स और परिवार की उम्मीदें और उनकी इज्जत जुड़ी थी। उस वक्त मेरी मजबूरी थी कि सब सहना ही पड़ा मुझे, पर इसके बावजूद उन्होंने धोखा दिया मुझे, चीट किया मुझे, और उनके कारण मैंने अपना बच्चा खो दिया। फिर भी उस शख्स का गरूर कम नहीं हुआ, उन्हें आज भी अपनी गलती का एहसास नहीं।
उन्होंने पति होने का हक जताते हुए कितनी ही बार जबरदस्ती की है मेरे साथ। शादी के अगले दिन इतनी ब्रूटल रेप किया था कि मेरी उठने तक की हालत नहीं थी। इंसान नहीं, राक्षस जैसा व्यवहार है उनका मेरे साथ। जब उनके शरीर की भूख जागती तो कुछ नजर नहीं आता था उन्हें। अगर मैं मना करती तो अपना गुस्सा मुझ पर निकालते। उन्होंने शारीरिक के साथ साथ मानसिक और इमोशनली रूप से भी शोषण किया है मेरा। मुझे हमेशा नीचा दिखाया है। हर बात पर मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं उनके काबिल नहीं हूँ। पर अब जब मैं उन्हें छोड़ना चाहती हूँ तो ये भी उन्हें मंजूर नहीं, क्योंकि यहाँ उनकी मर्दाना गरूर बीच में आ रहा है कि मैं कैसे उन्हें छोड़ रही हूँ। छोड़ना तो उन्हें था मुझे। मेरी जिंदगी बर्बाद करके अपने अहम को संतुष्ट करना चाहते थे वो। पर जब ऐसा ना कर सके तो अब मुझे अपने सामने झुकने पर मजबूर करने के लिए घटिया हरकतें करने लगे हैं। मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। मैं बाहर निकलती हूँ, लोग ऐसी गंदी नजरों से मुझे देखते हैं कि मुझे खुद से घिन होने लगती है। बीती रात भी मेरे घर के बाहर आकर इतनी गंदी गंदी बातें कही हैं, घटिया गालियां दी हैं। मैं अब थक गई हूँ इन सब से। मुझे आज़ादी चाहिए इस घुटन भरे रिश्ते से। मैं उन्हें कोई सज़ा नहीं दिलाना चाहती, वरना कल को वो फिर मुझसे बदला लेने आ जाएंगे। मैं बस चाहती हूँ कि मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाए और वो मेरा और मेरे परिवार का पीछा छोड़ दें। वो मेरी तीन और बहनें हैं, मैं इन सब के कारण उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। मेरे पापा के शर्मिंदगी से झुके सर की वजह नहीं बनना चाहती। राधिका ने शॉर्ट में काफ़ी कुछ बता दिया था उसे, जिसे अभिजीत ने बड़े ही शांति से और ध्यान से सुना। फिर व्यंग्य भरी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बोला, आप लड़कियां भी कमाल करती हैं ना। पहले खुद अबला बेचारी बनाकर मर्दों के अत्याचार उनकी दादागिरी सहती हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाती हैं, शादी के नाम पर अपना वजूद तक मिटा देती हैं, अपने स्वाभिमान तक को ताक पर रख देती हैं। और जब वही मर्द अपनी हर सीमा लांघ जाते हैं तो मदद की गुहार लगाने लगती हैं। पर आप लोग कभी ये क्यों नहीं सोचती कि अगर शुरू में ही गलत का विरोध करो तो हालात को इतना बिगड़ने से पहले ही काबू में किया जा सकता है। जैसे आपके केस में, जब शादी की पहली रात आपके पति ने आपके साथ जबरदस्ती की थी तभी मैरिटल रेप का केस ठोक देती, आपको उस टॉक्सिक इंसान और रिश्ते से आज़ादी मिल जाती। और जब वो जेल की सलाखों के पीछे जाता तो उसके जिस्म की सारी आग भी ठंडी हो जाती और मर्दानगी भी निकल जाती। पर आप इंतज़ार करती रहीं कि वो आपके साथ और बुरा करे और अब परेशान हो रही हैं। अभिजीत ने तंज कसा था उस पर। राधिका को लगा जैसे उसकी हालत का मजाक उड़ा रहा हो। उसका चेहरा गुस्से से तप गया। टू बी कंटिन्यूड। क्या करेगी अब राधिका? अभिजीत का ये अंदाज देखकर कुछ याद आया क्या आपको?